रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप अपने दोस्त आरजे भावना के साथ और रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर SS बंसल हुज MD मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट विद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 16 फरीदाबाद। हम आज बात करने वाले हैं कुछ ऐसी डिजीज पर जो हमारे दिल से रिलेटेड हैं। जी हाँ, दिल से तो रिलेटेड हैं लेकिन वो हमारे जन्म से भी रिलेटेड हैं। और ऐसी डिजीजेस पर बात करने के लिए एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर SS बंसल का रेडियो मानव रचना 107.8 के स्टूडियो में।
थैंक यू भावना।
डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं दिल की या हार्ट की जो जन्म से होती हैं, लेकिन इनका पता कैसे लगाया जाए?
बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हार्ट में जन्म से ही होती हैं। इनमें से खास तौर पे जो हार्ट के अंदर होल्स, हमने बड़ा कॉमनली सुना होगा कि इसके हार्ट में होल है
जी।
जो ये होल्स हैं, सारे होल्स जो हैं जन्म से ही होते हैं। हार्ट के अंदर कई प्रकार के होल्स हो सकते हैं, इसलिए हर एक हार्ट का होल सीरियस नहीं होता
जी।
तो एक तो हार्ट के होल्स हो गए, और दूसरा ये तो सिंपल बीमारी होगी होल्स वाली। एक होती है डक्ट जो हमारे राइट साइड को लेफ्ट साइड से कनेक्ट करती है, मतलब पल्मरी आर्टरी जो राइट का ब्लड लंग्स को देती है, राइट हार्ट का ब्लड लंग्स तक पहुंचाती है, उसको हम बोलते हैं पल्मरी आर्टरी। और जो लेफ्ट का ब्लड सारी बॉडी में पहुंचाती है वो आर्टरी होती है, वो उसको बोलते हैं हम एओर्टा। सो पल्मरी आर्टरी और एओर्टा के बीच में एक कनेक्शन होता है जन्म से पहले, लेकिन जन्म होते ही बच्चे का वो बंद हो जाता है, तो कईयों का वो बंद नहीं होता, तो उसको बोलते हैं PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। वो बहुत कॉमन जन्मजात हार्ट की बीमारी है। तो हार्ट के होल्स, PDA, ये कॉमन हैं, उस ये सिंपल डिसऑर्डर्स में आ जाते हैं। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज होती हैं। जो कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज में यूजली मल्टीपल डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ एलो, उसमें सबसे कॉमन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। कंजेनाइटल का मतलब जो जन्म से हो
जी।
तो जो टेट्रोलॉजी ऑफ एलो है, जैसे कि नेम से पता चलता है कि टेट्रोलॉजी मीन्स चार, हार्ट के अंदर चार डिफेक्ट होते हैं उसके अंदर। फिर इसी तरह से एक पेंटोलॉजी ऑफ फेलो होती है जिसमें 5 डिफेक्ट हार्ट के अंदर होते हैं
जी।
उसके अलावा जो हार्ट की ग्रेट आर्टरीज हैं, जो राइट वाली को पल्मरी आर्टरी कहते हैं, लेफ्ट वाली को एओर्टा बोलते हैं, जो हार्ट के अंदर से ब्लड को लेके जाती हैं, वो कई बार रिवर्स हो जाती हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज
जी।
एक बीमारी होती है जिसमें दोनों वेंट्रिकल की एक कॉमन ड्रेन पाइप होती है, यानी कि कॉमन आर्टरी होती है जो दोनों से ब्लड लेती है, उसको हम ट्रंकस आर्टरियोसिस बोलते हैं। कई बार हार्ट के दो चैम्बर बनने की बजाय एक ही चैम्बर बनता है, उसको सिंगल वेंट्रिकल बोलते हैं
जी।
उसी तरह से हार्ट का अपर चैम्बर कई बार दो की जगह एक ही होते हैं, उसको कॉमन एट्रियम बोलते हैं। फिर हार्ट के दो वेल होते हैं ना, राइट वाला और लेफ्ट वाला, जो अपर और लोअर चैम्बर को कनेक्ट करते हैं, AV वेल्स, कई बार वो एक ही वेल बनता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन AV कनाल। तो हार्ट की ये कम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट, और भी बहुत सारी लिस्ट है पर वो कोई इतनी डिटेल में नहीं जा रहा मैं। तो हार्ट की सिंपल बीमारियाँ भी हैं जो जन्म से होती हैं, और कम्प्लेक्स भी हैं। जो कम्प्लेक्स होती हैं उनमें तो बच्चा पहले से नीला पैदा होता है
जी,
उसके नेल्स ब्लू होंगे, जीभ उसकी ब्लू होगी, तो उसको लिप्स से और उसके नेल्स, लिप्स और माउथ से पता लग जाता है कि उसके ब्लूइश डिस्कलरेशन है, उसको हम साइनोसिस बोलते हैं। तो वो साइनोटिक हार्ट डिजीज आ जाती हैं। जो कम्प्लेक्स हार्ट डिजीज हैं वो ज़्यादातर साइनोटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं उनको, जो जन्म से साइनोसिस हो बच्चों को, नीले हों बच्चे, तो इसका मतलब है कि उसको कम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। और जो हार्ट के होल्स हैं या PDA हैं, वो उनमें बच्चा पिंक होता है, उनमें वो ब्लू नहीं होता बच्चा, तो वो पिंक नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड लगता है वो
जी।
तो वो सिंपल हार्ट डिजीजेस हैं। तो इस तरह से हार्ट की बीमारियों को आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, साइनोटिक और एसाइनोटिक, जो नीले हैं या पिंक हैं
जी।
तो वो बच्चे जो ब्लू हैं वो ज़्यादा सीरियस बच्चे हैं, उनको इमीडिएटली अटेंशन चाहिए। जो पिंक हैं उनमें आप वेट कर सकते
जी। डॉक्टर साहब, ये एक बहुत अहम सवाल है कि अगर बच्चे को जन्म से ही कोई बीमारी है तो क्या कारण हो सकता है जन्म से बीमारी होने का?
जन्म से एक्चुअली डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं
जी।
ज़्यादातर वो हेरिडिटरी होती हैं, जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं
जी।
खास तौर पे एक डाउन सिंड्रोम आपने शायद सुना हो, वो बहुत कॉमन बीमारी है डाउन सिंड्रोम
जी।
डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है हमारा, क्रोमोसोम के अंदर 21 क्रोमोसोम में 3 क्रोमोसोम लग जाते हैं, तो ट्राइसोमी बोलते हैं उसको
जी।
तो ट्राइसोमी, उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है, मतलब इट्स ए जेनेटिक डिफेक्ट, उसके अंदर एक तो मेंटल रिटार्डेशन होती है, और उसके हार्ट के अंदर जो मैंने आपको बताया था कॉमन AV वेल्व हो जाता है
जी।
लेफ्ट और राइट का वेल्व दो होने की बजाय एक ही बन जाता है। कई बार वो डिफेक्ट होता है, कई बार उनमें हार्ट में होल होते हैं
जी।
तो एक डाउन सिंड्रोम तरह की ऐसी जन्म से डिफेक्ट होते हैं हार्ट के अंदर जो हेरिडिटरी होते हैं, जो जेनेटिक डिफेक्ट की वजह से होते हैं। दूसरा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर मदर का एक्सरेज करा लिए उसने, एक्सरे बहुत कॉमन चीज़ है, कई बार पता ही नहीं होता लेडी को मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो एक्सरे करा लेती है या सीटी स्कैन करा लेती है या एंजियोग्राफी करा लेती है
जी।
तो उसमें जो रेडिएशन होती है, एक्सरेज होते हैं, वो बच्चे में डिफेक्ट पैदा कर देते हैं
जी।
उसके अलावा जो आप कई ऐसी मेडिसिन हैं जो फर्स्ट ट्रेमेस्टर में लेने से, यानी कि पहले तीन महीने प्रेगनेंसी के, उसमें हम कहते हैं मदर को मिनिमम दवाइयाँ लो जो बहुत ज़रूरी हैं और जो सेफ़ हैं, वो डॉक्टर से पूछे बिना कोई दवा ना लो। काफ़ी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि बच्चे में डिफेक्ट डाल देती हैं हार्ट के अंदर, अगर वो पहले तीन महीनों में खास तौर पे ली जाए तो। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अल्कोहल, अगर अल्कोहल लेती है मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उससे भी हार्ट के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स पैदा होते हैं
जी।
एक और कारण होता है वायरल इन्फेक्शंस, कुछ ऐसी वायरसेस हैं जो अगर मदर को इन्फेक्शन हो जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो वो बच्चे के हार्ट में डिफेक्ट पैदा कर देते हैं। रूबेला इज़ वन एग्जांपल। इसलिए वैक्सीनेशन की जाती है टू प्रिवेंट दोज इन्फेक्शंस इन दी मदर। तो इस तरह के कुछ कारण हैं जो बच्चे के, और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण और है, अगर किसी को पहले कोई बेबी ऐसा पैदा हुआ है जिसके अंदर हार्ट में डिफेक्ट था, तो उसको सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में, लेडी को प्रेगनेंसी के दौरान फीटस में हार्ट की एबनॉर्मेलिटी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डबल होते हैं
जी।
तो इसलिए उनका फिर आजकल क्या है, अल्ट्रासाउंड से आप पहले से ही देख सकते हो कि बच्चे के हार्ट में कोई डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है, फीटल इको बोलते हैं उसको
जी।
फीटल इको से पता चल जाता है। उसके अलावा उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूड होता है बेबी के आसपास, उस फ्लूड की टेस्टिंग से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज डिटेक्ट की जा सकती हैं
जी।
तो ये सारे मार्कर्स करते हैं आजकल, जिसकी फैमिली हिस्ट्री हो इस तरह की, या प्रीशियस चाइल्ड हो, या पेरेंट्स की एज ज़्यादा हो चुकी हो, बाद में प्रेगनेंसी हायर एज पे हो, वे पैटर्नल एज ज़्यादा है या मैटर्नल एज ज़्यादा है, उसमें भी डिफेक्ट आने का चांस ज़्यादा होता है। उसमें फिर हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के लिए तो मार्कर टेस्ट करते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के टेस्ट करते हैं, उनसे पहले ही पता लग सकता है कि बच्चे के हार्ट में डिफेक्ट तो नहीं है
जी।
बजाय कि बाद में सफ़र करें, पहले ही पता लग जाए और फिर उसका टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कोई कम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है तो उसकी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी प्लान की जा सकती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी
जी। डॉक्टर साहब एक और बात, जिस प्रकार आपने कहा कि जन्म से अगर किसी को ये बीमारी है तो क्या इसके सिम्टम्स नज़र आते हैं, जिस प्रकार बच्चा जब पैदा होता है तो क्या पैदा होते ही बच्चे के वो सिम्टम्स नज़र आते हैं?
जो बच्चे को कम्प्लेक्स कंजेनेटल हार्ट डिजीज होगी उसमें तो बच्चा नीला होगा, तो पहले ही दिख जाएगा कि नीला बच्चा पैदा हुआ है, जिसका बॉडी ब्लू है, खास तौर पे लिप्स, नेल्स, टंग, ये ब्लू नजर आएंगे
जी।
उसके अलावा बच्चा अगर पिंक भी है, अगर हार्ट के होल्स बड़े हैं
जी,
तो उसको सांस तेज लेता है बच्चा, उसकी सांस तेज चलती है, और उसके बाद थोड़ा सा बड़ा होने के बाद अगर बच्चा जो है ना मदर की फीड नहीं ले पाता प्रॉपरली, जैसे अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग दे रही है मदर, तो उसको बीच बीच में फीडिंग बंद करके सांस लेना पड़ता है बच्चे को
जी।
तो वो कंटिन्यूस प्रॉपर फीड नहीं ले पाता, और उसका फीड लेने के बावजूद उसका वजन नहीं बढ़ता
जी।
तो बच्चा जो है जो जिस रेट से उसका वेट बढ़ना चाहिए बच्चे का, वो नहीं बढ़ता, तो पीडियाट्रिशियन को पता चल जाता है कि फेलियर टू थ्राइव हो रहा है, द चाइल्ड इज नॉट एबल टू गेन वेट और द ब्रेथ ऑफ द चाइल्ड इज फास्ट, वो तेज सांस ले रहा है तो, और उसकी धड़कन तेज चल रही है
जी।
तो डॉक्टर जो बच्चों का डॉक्टर है उसको अगर ये लगे कि धड़कन तेज चल रही है, सांस तेज ले रहा है, नीला है, या ग्रो नहीं कर पा रहा, या उसके अलावा बच्चे को अगर स्टेथो रखते हैं बच्चों के डॉक्टर, तो उसमें उनको एबनॉर्मल साउंड मिलती हैं, मर्मर्स मिलती हैं, उससे उनको पता लग जाता है कि बच्चे के हार्ट में डिफेक्ट है
जी। और अदरवाइज जिस प्रकार आपने कहा कि अगर कोई बच्चा नॉर्मल है और उसके ये सारे सिम्टम्स मान लीजिए एक पीडियाट्रिशियन को भी नहीं पता लगा, तो क्या एक इंसान नॉर्मल जिंदगी जी सकता है इन सारी एबनॉर्मेलिटीज के साथ भी?
जी, बहुत सारे ऐसे डिफेक्ट हैं जिनसे कोई एबनॉर्मल साउंड पैदा नहीं होती
जी।
खास तौर पे जो हार्ट के अंदर बड़े होल होते हैं वो बहुत कम साउंड पैदा करते हैं, छोटे होल ज़्यादा साउंड पैदा करते हैं। तो ऐसी डिजीज़ जो हैं उनको डायग्नोज नहीं कर पाते स्टेथो से पीडियाट्रिशियन, तो उसके लिए सबसे अच्छा टेस्ट है इकोकार्डियोग्राफी। तो इको करा लिया, अगर इको नॉर्मल आ गया तो इस अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट ने अगर इको कर दिया और अच्छी मशीन पे कर दिया और उसमें अगर हार्ट नॉर्मल लेबल कर दिया, तो वो एक सर्टिफिकेट है कि हार्ट नॉर्मल है। अगर किसी ने नहीं कराया इको और वो मिस हो गया डायग्नोसिस, तो बड़े होने के बाद काफ़ी लोगों को कोई सिम्टम नहीं आते
जी।
क्योंकि होता क्या है, बड़े होल होने के बाद भी क्या लेफ्ट से जब ब्लड राइट में जाता है होल के थ्रू, तो लंग्स में बहुत ज़्यादा ब्लड जाता है, तो लंग्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लंग्स अपनी आर्टरीज को कंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। उससे ना एक बैलेंस बन जाता है कि शंटिंग कम हो जाती है, लेफ्ट से ब्लड राइट में जो जाता है ना उसको हम शंट बोलते हैं, लेफ्ट टू राइट शंट। तो लेफ्ट टू राइट शंट जो है वो कम होता जाता है धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं। तो लंग्स में फ्लडिंग नहीं होती, तो ना ब्रेथलेसनेस होती, ना ही उसमें बार बार इन्फेक्शन होती है। एक इसमें बड़ा, जब लंग्स की फ्लडिंग होती है ना होल की वजह से, तो बार बार निमोनिया होता है बच्चों को
जी।
बाद में वो क्या होता है कि बच्चों को कहेंगे जी बच्चा पहले ग्रो नहीं कर रहा था, उसके बाद बच्चे को बार बार निमोनिया हो रहा था, लेकिन अचानक जब बच्चा 2 साल का हुआ उसकी सारी चीज़ें ठीक हो गई, उसको ग्रो भी करना शुरू हो गया, उसको निमोनिया होने भी ठीक हो गए, और हमने तो कोई इलाज नहीं कराया। होता क्या है कि आप लंग्स जो हैं वो अपनी आर्टरीज को नैरो कर लेते हैं
जी।
ये नेचुरल प्रोसेस है, तो उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाती है लंग्स की आर्टरीज में, तो ब्लड जो है लंग्स को फ्लड नहीं कर पाता, तो राइट साइड के प्रेशर बढ़ जाते हैं जिससे कि लेफ्ट से राइट में ब्लड जाना कम हो जाता है, तो पेशेंट ठीक होने लगता है। लेकिन वो डेंजरस सिचुएशन है जिसमें कि आप ठीक हो रहे हो लेकिन अंदर प्रॉब्लम बढ़ रही है, फिर अल्टीमेटली वो लंग के प्रेशर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप जो है होल को बंद नहीं कर सकते उस समय। इसको हम आइजनमैंगर सिचुएशन बोलते हैं, विच इज़ ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। अगर किसी की आइजनमैंगर सिचुएशन हो जाए तो उसकी उम्र 20-25 साल रह जाती है, फिर वो 20-25 साल तक एंजॉय करेगा, उसका 20 साल बाद उसको खून आना शुरू हो जाता है खांसी के साथ, और उसके नीला पड़ना शुरू हो जाता है आदमी, और 25-30 साल के बाद उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है, खून को वो भी उसको ब्लड आता है बहुत ज़्यादा खांसी के साथ। तो इस सिचुएशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें ये देखना होता है कि लंग के प्रेशर तो नहीं बढ़ रहे इको में, चाहे आपको कोई तकलीफ नहीं है फिर भी इको में आपको देखना पड़ता है कि आपके अंदर से होल है कि नहीं, और होल कितना बड़ा है, और शंट कितना है, लेफ्ट से ब्लड राइट में कितना जा रहा है, राइट का प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर पहले से देख सकते हैं और टाइमली ऑपरेशन करके होल को बंद कर सकते हैं। अदरवाइज चाहे आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, फिर भी आपका फ्यूचर खराब हो सकता है अगर आप उस चीज़ को चेक नहीं कराते तो।
पर डॉक्टर साहब, एक नॉर्मल इंसान को या नॉर्मल पेरेंट्स को कैसे पता चले कि मेरे बच्चे में कोई भी ऐसी जन्मजात डिजीज है?
अगर किसी को शक है, जिस किसी के एक बच्चे में ऐसा हुआ है, तो उनको सभी बच्चों का इको करा लेना चाहिए
जी।
और ख़ास तौर पे अगर उनको लगता है कि बच्चा जो है तेज नहीं दौड़ पाता, बच्चे का स्टेमिना कम है, और बच्चे को पहले ग्रो नहीं किया था, बच्चा टाइम लगा था उसको, डिलेड ग्रोथ थी, और बचपन में निमोनिया हुआ था, इस तरह की सिचुएशन जिसमें कि एक सिबलिंग को हार्ट डिफेक्ट है, या बचपन में उसको नीलेपन की हिस्ट्री है, या बचपन में उसका ग्रोथ अच्छी नहीं रही, ऐसे में इको इज़ द ओनली सॉल्यूशन। इको टेस्ट कराने से ही पता चलेगा कि हार्ट में डिफेक्ट है कि नहीं
जी। डॉक्टर साहब, आपने टेस्ट तो बता दिया, लेकिन अब आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसी जन्मजात डिजीज का इलाज क्या होता है और किस पर्टिकुलर एज पर ये इलाज होता है? क्या बचपन से ही ये इलाज शुरू हो जाता है या किसी एक नॉर्मल एज पर आने के बाद इसे किया जाता है?
यूजली कम्प्लेक्स कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो होती हैं उनमें तो हमें पहले साल में ही उसका सर्जरी करना पड़ता है, मतलब 1 साल की उम्र से पहले ही। खासतौर पर अगर ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज है उसमें तो स्विच ऑपरेशन करते हैं, वो तो पहले महीने में करते हैं, बच्चे के पैदा होने के फर्स्ट मंथ में करते हैं उसको
जी।
उसके अलावा जैसे कुछ बीमारियाँ हैं उन जैसे वो भी कम्प्लेक्स हैं, जैसे टेट्रोलॉजी ऑफ एलो सबसे कॉमन कम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ है, उसका इलाज 2 साल की उम्र से 5 साल की उम्र के बीच में करते हैं, ऑपरेशन करते हैं उसका, चारों डिफेक्ट हार्ट के ठीक कर देते हैं, 4 हों 5 हों, पेंटोलॉजी हो टेट्रोलॉजी हो, उसको 2 साल से 5 साल की उम्र में उसका ऑपरेशन होना चाहिए। जो PDA है, PDA जो डिफेक्ट है वो 1 साल तक कई बार अपने आप बंद हो जाता है, तो उसमें 1 साल तक उसको नहीं करते, वेट करते हैं। हार्ट के जो होल्स हैं अगर वो होल छोटे हैं, तंग नहीं कर रहे, तो कई बार काफ़ी सारे होल्स ऐसे हैं जो अपने आप बंद हो जाते हैं 5 साल, जैसे VSD है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वो हम 10 साल की उम्र तक वेट कर सकते हैं, बंद हो सकता है 10 साल की उम्र तक। लेकिन अगर वो इतना बड़ा है कि वो आइजनमैंगर सिचुएशन पैदा कर सकता है, लेफ्ट राइट शंट बहुत ज़्यादा है और बच्चा ग्रो नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से बार बार निमोनिया हो रहा है, फिर हम उसको पहले बंद करते हैं। नॉर्मली जो ASD है, अपर चैम्बर के बीच में डिफेक्ट, उसको हम 5 साल से 10 साल की उम्र में बंद करते हैं। VSD को हम 2 साल से 10 साल की उम्र में अगर बड़ा होल हो तो बंद कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ डिसीजन इको के बेसिस पे लिया जाता है, इको में अगर लंग के प्रेशर बढ़ रहे हैं तो हमें जल्दी भी करना पड़ता है।
तो दोस्तों ये तो हमने जाना हार्ट डिजीजेस के बारे में, और वो भी ऐसी हार्ट डिजीजेस के बारे में जो जन्मजात होती हैं। लेकिन अब बात करते हैं हम ऐसी डिजीज की जो कि बाद में होती है, यानी वैल्वुलर हार्ट डिजीज होती है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि वाल्व की खराबी की डिजीज होती क्या है।
हार्ट के जो वाल्व, चार वाल्व होते हैं हार्ट के अंदर
जी।
लेफ्ट साइड में दो वाल्व होते हैं, जो अपर और लोअर चैम्बर के बीच में वाल्व होता है उसको हम मिट्रल वाल्व बोलते हैं। फिर जो वेंट्रिकल से एओर्टा के बीच में जो ब्लड वेंट्रिकल ने पंप करना है एओर्टा में, उनके बीच में जो वाल्व होता है उसको एओर्टिक वाल्व बोलते हैं। ऐसे ही लेफ्ट के दो हैं, ऐसे ही राइट में भी दो हैं। राइट में एक ट्राइकस्पिड है और एक पल्मरी है। तो हार्ट के अंदर चार वाल्व हैं। इन चारों वाल्व का बेसिक फंक्शन क्या है? फंक्शन ये है कि हार्ट जो ब्लड पंप करता है वो आगे जाए पीछे ना जाए
जी।
जिस तरफ को ब्लड को पंप किया गया है उसी डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड फ्लो करे
जी।
और जब हार्ट का ब्लड वापस आने लगे तो वाल्व बंद हो जाए, तो उसको पीछे ना आने दे
जी।
तो ये है वाल्व का फंक्शन। तो इसी तरह से हार्ट के जो वाल्व हैं उनमें दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। एक तो वो नैरो हो जाते हैं, नैरो होकर इतने सिकुड़ जाते हैं कि वो जो फॉरवर्ड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं
जी।
और एक ऐसा है कि वो उनके वो वाल्व खराब हो जाते हैं, वो अच्छे से बंद नहीं होते, तो वो बैकवर्ड फ्लो जिसके लिए वो बने हैं कि बैकवर्ड फ्लो ना जाने दें, तो जब वो डिफेक्टिव हो जाते हैं, प्रॉपरली क्लोज नहीं होते, तो वो बैकवर्ड फ्लो होना शुरू हो जाता है। उसको हम लीकेज बोलते हैं कि वाल्व लीक करने लग गया, उसको रीगर्जिटेशन टेक्निकली बोलते हैं। तो हार्ट के जो वाल्व हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है नैरोइंग की वजह से, और लीकेज भी हो सकती है रीगर्जिटेशन जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे डिफेक्ट जो हैं हार्ट के जन्म से भी हो सकते हैं और एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। जो ये डिफेक्ट की डिग्री पे डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट, कि अगर डिफेक्ट थोड़ा है तो यूजली पेशेंट को पता नहीं चलता। ये ज़्यादातर तभी तंग करते हैं जब ये डिफेक्ट बहुत सीवियर हो जाते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट डिफेक्ट जो होते हैं वो आदमी टॉलरेट कर लेते हैं सभी लोग, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चलता। तो जब सीवियर डिफेक्ट होते हैं तब भी काफ़ी लोगों को पता, जो सिडेंटरी लोग होते हैं ना उनको तब भी नहीं पता चलता। जब हार्ट बड़ा हो जाता है, वीक हो जाता है डिफेक्ट्स की वजह से, तब वो हमारे पास आते हैं। तो उस समय तो सर्जरी करके उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है, सर्जरी या नॉन सर्जिकल मेथड। पर जो हमें पहले मिलते हैं लोग उनको हम दवाइयों से भी ठीक कर लेते हैं।
डॉक्टर साहब, जिस प्रकार आपने बताया कि इनका इलाज है दवाई या फिर सर्जरी, लेकिन एक इंसान को कैसे पता लगे कि उसे वाल्व की कोई डिजीज़ है?
हार्ट के जब आदमी को सांस, सबसे पहली बात तो यह है कि जब वाल्व की प्रॉब्लम होती है तो उसके दो तीन तरह के लक्षण आते हैं। एक तो लक्षण आते हैं जो अगर सीवियर प्रॉब्लम है, वाल्व की लीकेज या वाल्व की ऑब्स्ट्रक्शन सीवियर है, तो आदमी को थकावट होने लगती है, क्योंकि अल्टीमेटली हार्ट का काम है ब्लड पहुंचाना सारे शरीर में
जी।
जब वो वाल्व खराब होते हैं तो या तो ब्लड लीक कर जाता है हार्ट के अंदर ही, या वो रुकावट की वजह से पूरा पहुंचता नहीं है, तो बॉडी को पूरा ब्लड नहीं मिलता, तो हमारा शरीर जल्दी थकने लगता है
जी।
तो हमारे लक्षण होते हैं भी थोड़ा सा काम करके हम थक गए, एक तो ये सबसे बड़ा लक्षण होता है। दूसरा होता है कि लीकेज की वजह से लंग्स में ब्लड वापस चला जाता है लीक करके, तो हमें हमारा सांस फूलने लगता है। तो या ऑब्स्ट्रक्शन है लंग से, ब्लड ने वाल्व के थ्रू आना है हार्ट के अंदर, तो वो वाल्व अगर ऑब्स्ट्रक्टेड है तो लंग से वो ब्लड हार्ट में नहीं पहुंचता, उसको हम माइटल स्टिनोसिस बोलते हैं, उसमें फिर सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली सबसे कॉमन जो वाल्व के डिफेक्ट हैं वो हैं माइटल स्टिनोसिस एंड माइटल रीगर्जिटेशन। तो उसमें सांस फूलता है, थकावट लगती है पेशेंट को, और एओर्टिक ऑब्स्ट्रक्शन है, एक एओर्टिक वाल्व है, एओर्टिक वाल्व नैरो भी हो सकता है लीक भी कर सकता है। जब वो नैरो होता है तो आदमी जब एक्सरसाइज करने लगता है तो उसको चक्कर आने लगते हैं, तो वो अंधेरा सा आके गिर जाएगा। तो उसके लक्षण ये हैं, या तो सांस फूलेगा, या जल्दी थक जाएंगे, या उसको चक्कर आने लगेंगे, अंधेरा आके गिर सकता है। और जो एओर्टिक रीगर्जिटेशन वाल्व का ऐसा डिफेक्ट है, और माइटल स्टेनोसिस ऐसा डिफेक्ट है जिसमें हार्ट के चैम्बर बड़े हो जाते हैं। माइटल स्टेनोसिस में अपर चैम्बर बड़े हो जाते हैं, एओर्टिक रीगर्जिटेशन में लोअर चैम्बर बड़े हो जाते हैं। तो वो चैम्बर जब बड़े होते हैं तो धड़कन बिगड़नी शुरू हो जाती है, तो पैल्पिटेशन होने लगती है
जी।
तो अगर आपको पैल्पिटेशन हो, जल्दी थक जाते हो, या सांस फूलता हो, या अंधेरा आ जाता हो
जी,
तो आप समझो कि हार्ट के वाल्व के डिफेक्ट हो सकते हैं। और एक सिंपल सा टेस्ट ECG, एक्सरे एंड इको, इनसे आपकी सारी पोजीशन क्लियर हो जाती है कि आपका कौन सा वाल्व खराब है, कितना खराब है, और उसके लिए क्या करना चाहिए। तो ये बड़ा सिंपल सा, मतलब डायग्नोसिस बनाने के लिए ये चीज़ें सब जगह अवेलेबल हैं। सिंपल सा थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये लक्षण है, आप अपना ECG, एक्सरे और इको तीन चीज़ें करा लें, आपकी सारी पोजीशन क्लियर हो जाएगी।
डॉक्टर साहब, जिस प्रकार आपने बताया कि किस प्रकार से इसको डायग्नोस किया जा सकता है, किन टेस्ट को हम अंडरगो कर सकते हैं, लेकिन अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। क्या इसका ट्रीटमेंट सर्जरी ही है या इसका दवाइयों से भी इलाज हो सकता है?
जो माइल्ड टू मॉडरेट डिफेक्ट हैं
जी,
उनको तो हम दवाइयों से ठीक करते हैं। पेशेंट को सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं और मेडिसिन देते हैं। जब डिफेक्ट सीवियर हो जाते हैं, उससे मतलब माइल्ड टू मॉडरेट को दवाइयों से बड़े अच्छे से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन रहती है, वो सारे काम कर सकता है एक्सेप्ट टू मच ऑफ एक्सर्शन। हम उसको बोलते हैं कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करना, रेस नहीं लगानी। नॉर्मल रूटीन लाइफ में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, अपने थोड़े से डिफेक्ट हार्ट के साथ वो जी सकते हैं एक नॉर्मल रूटीन कम्फर्टेबल लाइफ विद फ्यू मेडिसिन। जैसे ही डिफेक्ट सीवियर होते हैं, फिर उनमें, क्योंकि इट इज़ ए मैकेनिकल डिफेक्ट, वाल्व जो है या तो नैरो हो गया या लीक कर रहा है, बोथ आर मैकेनिकल डिफेक्ट। तो हम जो दवाइयाँ देते हैं ना, उससे डिफेक्ट नहीं ठीक होता, उससे उसको कंफर्टेबल रखा जाता है
जी।
तो मैकेनिकल डिफेक्ट का इलाज मैकेनिकल होता है। तो अगर सीवियर है और आप दवाइयों के बावजूद कंफर्टेबल नहीं हो रहे, या आपका हार्ट बड़ा होना शुरू हो गया, वीक होना शुरू हो गया, तो दैट इज़ द टाइम व्हेन सर्जरी इज रिक्वायर्ड। तो उस समय अगर हम सर्जरी नहीं करते, फिर हार्ट वीक होता चला जाता है, होता चला जाता है, फिर आप ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हो जब आप इनऑपरेबल हो जाते हो, आपकी सर्जरी भी नहीं हो सकती फिर। तो राइट टाइम पे सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती, ना माइल्ड टू मॉडरेट डिफेक्ट में होती, सीवियर डिफेक्ट के बाद जब वो हार्ट को अफेक्ट करना शुरू करता है तब सर्जरी करनी पड़ती है। अगर हार्ट का वाल्व में सीरियस डिफेक्ट है, सीवियर डिजीज है, तो उसमें ज़्यादातर हमें सर्जरी करके ठीक करना पड़ता है, क्योंकि उसको आप दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते। और वो एक टाइम होता है जब वो हार्ट को अफेक्ट करना शुरू हो जाता है, हार्ट के चैम्बर बड़े होने शुरू हो जाते हैं, हार्ट वीक होना शुरू हो जाता है, तो उस स्टेज में अगर आप ऑपरेशन नहीं करते तो बाद में इनऑपरेबल हो जाता है। तो दैट इज़ द टाइम व्हेन सर्जरी शुड नॉट बी डिलेड। तो एक चीज़ और है कि जो मैंने आपको सर्जरी बताई ना, मैं इसी की कंटिन्यूटी में मैं एक बताना चाहूँगा कि सर्जरी, हर वाल्व के केस में सर्जरी नहीं करनी पड़ती। कई बहुत सारी ऐसी कंडीशन हैं जिनको हम बिना सर्जरी के भी ठीक कर सकते हैं। कैथेटर बेस्ड टेक्निक्स हैं जिनमें हम पेशेंट के कैथेटर डाल के बैलून डालते हैं वाल्व में, सुकड़े हुए वाल्व को बैलून से खोल देते हैं
जी।
तो वो हर चीज़ के लिए सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत सारे आजकल वाल्व के डिफेक्ट जो हैं वो नॉन सर्जिकल टेक्निक्स, कैथेटर बेस्ड टेक्निक से भी ठीक हो सकते हैं
जी। डॉक्टर साहब, क्या इस वाल्वुलर हार्ट डिजीज से प्रिवेंट भी अपने आप को कोई कर सकता है?
जी, जो वाल्वुलर हार्ट डिजीज है उसका जो सबसे बड़ा कारण है, पहली बात तो ये आप जानो कि भी ये वाल्वुलर डिजीज है ना, इंडिया के अलावा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन्हीं में ज़्यादा है, यूरोप और US में नहीं है। उसका कारण क्या है कि इंडिया के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप का, या इंडिया जैसी कंट्रीज के साथ कंट्रीज में एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो ये ग्रुप बी बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, ये एक स्पेशल बैक्टीरिया है जो ये अपनी कंट्री में बहुत ज़्यादा पाया जाता है
जी।
इससे जब गला ख़राब होता है, उस गले ख़राब से बॉडी के अंदर, वो गला तो ठीक हो जाता है बाद में, लेकिन वो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जो कि हार्ट के वाल्व को ये समझती हैं कि वो बैक्टीरिया है, बिकॉज वो बैक्टीरिया का एंटीजन हार्ट के वाल्व से मिलता जुलता है
जी।
तो वो एंटीबॉडीज जो हैं उसको फौरन समझ के वो हार्ट के वाल्व को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं, हार्ट के वाल्व ख़राब कर देती हैं। ये सबसे बड़ा कारण है इंडिया में हार्ट की वाल्व की बीमारियां पैदा करने का
जी।
इसलिए इसको प्रिवेंट बहुत आसानी से किया जा सकता है, सिंपली बाय प्रिवेंटिंग सोर थ्रोट ड्यू टू दिस बैक्टीरिया
जी।
तो अब हर बार आप सोर थ्रोट में ये तो देख नहीं सकते कि आपको कौन सा बैक्टीरिया है गले में
जी।
तो इसलिए एक सिंपल पेनिडुरा का इंजेक्शन हम लगा देते हैं जिसमें कि लॉन्ग एक्टिंग पेनिसिलिन है, वो आपके ब्लड के अंदर थोड़ा थोड़ा लेवल मेंटेन रहता है फॉर 3 वीक्स। एक इंजेक्शन लगाने के बाद 3 हफ्ते तक उसका एक एंटीबायोटिक लेवल अंदर मेंटेन रहता है
जी।
जो उस बैक्टीरिया को अंदर आने ही नहीं देता
जी।
तो वो ब्लड के अंदर बैक्टीरिया आ ही नहीं सकता, इसलिए वो पेनिडुरा का इंजेक्शन जो है वो हम ऐसे पेशेंट में लगाते हैं दोज हु हैव हिस्ट्री ऑफ रूमेटिक फीवर, जिनको ये बीमारी हुई है
जी।
उनको अगर बार बार अगर उस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होती है तो वाल डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं और बहुत जल्दी उनको ऑपरेशन कराना पड़ता है
जी।
तो उसको इस इन्फेक्शन से बचाने के लिए 3-3 हफ्ते पे पेनिडुरा का इंजेक्शन लेना पड़ता है
जी।
वो सबसे इम्पोर्टेंट, वाल को ठीक रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव स्टेप है।
डॉक्टर साहब, जिस प्रकार आपने हमें बताया कि कारण क्या हो सकते हैं, हम इन्हें प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, लेकिन एक और सवाल आता है, डाइट। क्या डाइट भी एक कारण हो सकता है कि हमें वैल्वुलर डिजीज हो? और मान लीजिए अगर किसी को वैल्वुलर डिजीज है तो उसमें उसकी डाइट क्या होनी चाहिए?
डाइट से कोई वैल्वुलर डिजीज नहीं होती
जी,
लेकिन जिसको वैल्वुलर डिजीज है उसमें हम साल्ट रेस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि आपको खासतौर पर माइटल स्नोसिस में हम पेशेंट को बोलते हैं भी तुमको 3-4 ग्राम से ज्यादा साल्ट नहीं लेना डेली
जी।
उसके अलावा काफ़ी वेल्व के पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें धड़कन की प्रॉब्लम हो जाती है और पेशेंट को क्लॉट बन जाते हैं हार्ट के अंदर और वो ब्रेन में जाके पैरालिसिस करते हैं। तो उन पेशेंट्स को जिनमें ऐसा रिस्क हो उनको हम एसीट्रोम दवाई देते हैं
जी।
जो एक ब्लड थिनर है, पावरफुल ब्लड थिनर है। और जिनको वाल चेंज कराना पड़ता है, वाल रिप्लेसमेंट करानी पड़ती है, मेटल का वाल्व डलता है हार्ट में, उनको भी ब्लड थिनर देना पड़ता है, एसीट्रोम नाम की दवाई देनी पड़ती है। एक वारफरिन के नाम से आती है, एक एसीट्रोम के, उनको लाइफ लॉन्ग वो मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो उस मेडिसिन में हमें ब्लड को एक पर्टिकुलर लेवल तक ही थिन रखना होता है। ज़्यादा थिन हो जाए तो ब्रेन हेमरेज हो सकती है, पेट में ब्लीडिंग हो सकती है। कम थिन हो तो उसमें वाल्व के ऊपर, मेटल के ऊपर क्लॉट बन जाते हैं या चैम्बर में क्लॉट बन जाते हैं, उससे पैरालिसिस का डर रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम उसमें डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है
जी।
उनमें जो पेशेंट ब्लड थिनर पे हो, वारफरिन या एसीट्रोम, उसमें फिर हम कहते हैं हरी पत्ते वाली सब्जियां नहीं खानी, नॉन वेज नहीं खाना, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स नहीं खानी, पेन किलर बिना डॉक्टर को पूछे नहीं खाने, उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं। अदरवाइज जिनको एसीट्रोम या वारफरिन ब्लड थिनर नहीं चल रहे, उसमें सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन के अलावा और किसी डाइट प्रिकॉशन की जरूरत नहीं रहती, एक्सेप्ट कि आपका कैलोरी इंटेक एडिक्वेट होना चाहिए ताकि आप आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन कर सकें। अगर आपका वाल की प्रॉब्लम है और साथ में आप मोटे हैं तो आपका सांस ज्यादा फूलेगा
जी। डॉक्टर साहब, तहे दिल से आपका धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप रेडियो मानवरचना 107.8 के स्टूडियो में आए और हार्ट रिलेटेड और हार्ट डिजीज से रिलेटेड हमारे सभी लिसनर्स को दी इतनी बेहतरीन जानकारी।
मैं आप लोगों का थैंकफुल हूं कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने श्रोताओं के लिए कुछ कर सकूं। और मुझे लगता है कि ये बेसिक जो नॉलेज है अबाउट हार्ट डिजीज, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं
जी।
वो मुझे लगता है कि लिसनर्स को कुछ ना कुछ भ्रांतियाँ या मिसकंसेप्शंस मेरी बातें सुन के जरूर, मुझे लगता है उससे कुछ मदद मिलेगी समाज को और लोगों को कि वो अपनी मिसकंसेप्शंस को दूर कर पाएंगे
जी।
थैंक यू।